आज हम लोग सावित्री बुक टू कैंटो सिक्स द किंगडम्स एंड गॉडहेड्स ऑफ द ग्रेटर लाइफ इसका थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि शेरविन ने कई बहुत अद्भुत बातें कही हैं, उसमें से एक जो बहुत ही अद्भुत रिवेलेशन है वो है इवोल्यूशनरी हायरार्की। ये हमारे यहाँ है लेकिन हम इसको भूल गए हैं। और इवोल्यूशनरी हायरार्की का मतलब ये हुआ कि हमारी जो यात्रा है जीवन की वो एक जीवन की यात्रा नहीं है। इसका जैसा कल भी हम लोग द सेलर ऑन द फ्लो ऑफ टाइम इस पे इसकी बात हो रही थी कि वो कई जन्मों से कई पड़ावों से गुजरती है और हम इसको छलांग लगा के नहीं जा सकते। शेरविन एक जगह कहते हैं यू कैनॉट टेक द किंगडम ऑफ हेवन बाई स्टॉर्म। प्रयास करने से आदमी गिर पड़ता है। यू हैव टू गो थ्रू स्टेप्स एंड स्टेजेस। तो पहला स्टेज है जब मनुष्य पूरी तरह देह चिन्ह में होता है, उसको देह आत्मबोध भी कह सकते हैं। ही इज कॉन्शियस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, ही इज कॉन्शियस ऑफ द शरीर एंड जो मेटीरियल वर्ल्ड है उसी के प्रति कॉन्शियस होता है। ये पहला स्टेज है इवोल्यूशन का। इसको हम एक प्रकार से प्रिमिटिव ह्यूमैनिटी कह सकते हैं। और जैसे कि बात हुई प्रिमिटिव का अर्थ कोई बाहरी वेशभूषा पढ़ाई से नहीं है किंतु एक आंतरिक अवस्था है जिसमें हम केवल जो हमारे इमीडिएट परिवेश में है उसी को समझते हैं और वही हमारे लिए सब कुछ होता है। और हम जीवन की जो बेसिक नेसेसिटी है भोजन सोना चिल्ड्रन इसी को हम अल्टीमेट गोल समझते हैं। इसके बाद फिर हम प्राण चिन्ह में होते हैं। वी बिकम कॉन्शियस ऑफ द वाइटल डिजायर। हम डिजायर सेल्फ में जागते हैं। पहला है अन्नमय कोश में फिजिकल सेल्फ को हम आत्मा समझते हैं। इसके बाद हम वाइटल सेल्फ को आत्मा समझते हैं, दिस इज मी। लेकिन वाइटल सेल्फ में एक पैसेज है, वो एक सीढ़ी नहीं है उसमें खुद ही, क्योंकि प्राण का स्वभाव यह है कि वो एक्सपैंड करता है। तो पहली सीढ़ी हम लोगों ने पिछली बार पढ़ी थी, वो है किंगडम्स ऑफ द लिटिल लाइफ। लिटिल लाइफ क्या है? वो केवल मैं, उस पर स्वकेंद्रित है और स्वकेंद्रित भी केवल अपने जीवन की जो बेसिक आउटर चीजें हैं, भोजन हो जाए, एक बढ़िया घर हो जाए, रोटी कपड़ा मकान जिसकी बात होती है, और वे लोग जो मेरे फिजिकल उससे जुड़े हुए हैं, या उसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ आदान प्रदान भी होता है इंटरचेंज तो सीमाओं के अंतर्गत। तो ये है लिटिल लाइफ। और लिटिल लाइफ नेचुरली एक बहुत मिजरेबल लाइफ है। एक समय आता है जब उसकी सीमाओं का व्यक्ति को ज्ञान होता है। और किसी भी जीवन में ये कि इसमें और भी इंटरेस्टिंग बात हम लोग को स्मरण रखनी चाहिए, यदि हमको अंदर में छटपटाहट हो रही है किसी तरह की, इसका मतलब ये हुआ कि हम जीवन को जिस परिधि के अंदर जिस सीमा के अंदर अनुभव कर रहे थे अब उसके अतिक्रमण का समय आ गया है। नाउ वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो तब क्या होता है कि अंदर में स्टाइफल फील होने लगता है। वही चीज़ें जो उसको संतोष देती थी उसको अंदर में वो कहीं ना कहीं कुछ होता है। जैसे बच्चा गर्भ के अंदर है तो अलग अलग स्टेज में एक स्टेज आती है जब वो छटपटाने लगता है क्योंकि वो बाहर आना चाहता है। तो वो जब छटपट होती है तो उसका रियल कारण होता है कि अंदर अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाना चाह रहे हैं। और अगर हम इस पुकार को नहीं सुनते हैं तो कभी कभी वन हैज़ टू चेंज द बॉडी। ये भी होता है कि हम शरीर को त्याग कर, ये भी होता है कि आप नेक्स्ट स्टेप पे चले गए लेकिन अगर आपने कुछ छोड़ दिया पिछले स्टेज में, नहीं किया, आधा अधूरा है, तो यू कम बैक। ये सारी चीजें माता जी ने बड़े विस्तार से समझाई हैं कि यू कम बैक क्योंकि कोई चीज छूट गई थी उसको आपको फिर से साथ लेकर के जाना है। और इसका माता जी एग्जाम्पल देती हैं कि लाइक पेरेंट्स हैं बच्चों के साथ जा रहे हैं तो बच्चे अगर उनको उनके साथ पिकअप नहीं कर पाते हैं तो पेरेंट्स को रुकना पड़ता है, वापस आते हैं, बच्चों को साथ लेके जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये संभव है कि हमारा उच्च मन या हमारी चैत्य सत्ता कोई हायर ट्रुथ की तरफ जाग गई है लेकिन हमारा प्राण और हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो वी हैव टू कम बैक एंड पिक इट अप एंड प्रोसीड ऑन द जर्नी। तो इसीलिए ये जर्नी जो इवोल्यूशन की है बड़ी फैसिनेटिंग भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। और ये इम्पेशेंट लोगों के लिए नहीं है जो चाहते हैं कि आज एक दिन में हम कॉन्कर कर लें। शेरविंद की अगर हम लेटर्स देखें, माताजी एंड्योरेंस पेशेंस परसीवरेंस यहाँ तक कह देती हैं विक्ट्री गोज टू द मोस्ट एंड्योरिंग। एक जगह कहती है विक्ट्री इज फॉर द मोस्ट परसीवरिंग। और वो इसी कारण से क्योंकि बहुत कुछ है जो संतुलन, आपने एक पार्ट को ऊपर उठाया तो अब एक नया संतुलन बना, थोड़े समय बाद जो पार्ट नहीं उठे वो पीछे आपको खींच रहे हैं, अगेन आप जा रहे हो उसको ऊपर उठा रहे हो, एक असंतुलन हुआ, फिर एक नवीन संतुलन हुआ। इसको लाइफ डिवाइन में शेयरविंद एसेंट एंड इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है। ये वो रास्ता नहीं है जहां केवल हमारी आत्मा निकल करके पूर्ण सत्य के साथ एक हो गई, क्योंकि ये रूपांतरण का योग है। तो इसलिए ये सारी चीजें विस्तार से समझने की जरूरत है। अब जब हम डिजायर्ड सेल्फ प्राण के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो पहले डिजायर्स क्या होती हैं, यही होती हैं। हम और लोग कहते हैं कि भाई हमारी तो बहुत कामनाएं नहीं है, बस भगवान हमको एक घर दे दे, भोजन दे दे, ठीक से रहे तो हमें संतोष है। ये बहुत अच्छी अवस्था नहीं है, क्योंकि ये तो पशु भी यही सीख करता है। भगवान हमको एक डेन दे दे, अगर पशु की भाषा होती तो क्या कहता कि बारिश होती है तो मुझे एक मेरा डेन हो जहाँ मैं आश्रय ले सकूँ, मेरे भी ऑफस्प्रिंग हो, भोजन मिल जाए। तो ये लोग इसको बहुत एक्सटॉल करते हैं ये, क्योंकि हमारे अंदर एक मायावाद की चीज़ आ गई, तो हम इन चीज़ों को एक्सटॉल करने लगे, बहुत मानो ये बहुत बड़ी वर्च्यूज़ है। लेकिन जब प्राण अपने आप को जो देह की पकड़ है, बाहरी जीवन की पकड़ है, उससे बाहर निकल करके कोई बृहत महत चीज को ढूंढने लगता है, तब रियल जर्नी शुरू होती है, जो प्राणवंत प्राण चिन्ह में जीवन की। तो वो हायर लेवल पे क्या है, अब अगर हम इसको चक्रों के हिसाब से देखें तो पहले मूलाधार है मणिपुरी है, जिसमें हमारा ये फिजिकल कॉन्शियसनेस और लोअर वाइटल यही चीजों को सीख करते हैं। फिर उसके बाद आता है स्वाधिष्ठान, जहां पे देर इज एम्बिशन। तो एम्बिशन क्या होता है, प्राण अब क्या सीख कर रहा है। कोई एम्बिशियस व्यक्ति जो होता है, जो किंग्स हैं जैसे कॉन्करर्स हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं कि मेरा नाम, ये हमको लगता है कि वो अपने नाम के लिए, जो जो कॉन्करर्स हैं उनके अंदर उसके बिना उनका जीवन उनको अधूरा लगता है। इट इज द अर्ज विद इन देम। अब अलेक्जेंडर से कोई पूछो तो उसको विश्व विजेता बनने का अपने, इट इज एन इगोइस्टिक लाइफ, बट टेरिबली इगोइस्टिक लाइफ। लेकिन उसमें तुम एक ऐसी चीज ढूंढ रहे हो जिसमें तुम अपने जीवन को रिस्क में डाल रहे हो। आफ्टर ऑल क्या जरूरत है। जब वो आया था पर्शिया के प्लेन्स पे, इंडो गैंजेटिक प्लेन पे, तो ही कुड हैव डाइड, ही इवेंचुअली डाइड। लेकिन ये अंदर में एक एम्बिशन का रूप लेके, उसी प्रकार से भावनाएं, भावनाओं के अंदर आइडियलिज्म कलर कर देते हैं हम जीवन को। अचानक जब ग्रेटर लाइफ जागती है हमारे अंदर, तो हम केवल सीमित जीवन से सेटिस्फाइड नहीं होते, हमको उसमें एक परफेक्शन चाहिए, हमको उसमें एक सौंदर्य चाहिए, हमको उसमें एक ट्रूथ चाहिए, उसके अंदर एक गुड चाहिए, उसके अंदर एक ब्यूटी चाहिए, एक हारमोनी चाहिए। अब किसी और से आप देखिए, आप दो प्रकार के लोग होते हैं। कल एक मेल आया था, उसी संदर्भ में बात हो रही थी कि कोई कहता है कि वैसे पहले तो बहुत अच्छा था कि लोग सेटिस्फाइड होते थे लाइफ में। फॉर एग्जांपल वो इस कंटेक्स्ट में बात हो रही थी कि मैरिज हो गई तो लोग कहते थे अब ठीक है, हम अब इसमें संतुष्ट हैं। लेकिन आज के समय में ये नहीं है, खाली मैरिज हो जाना काफी नहीं है, यू वांट ए परफेक्ट पार्टनर, ए परफेक्ट रिलेशनशिप, अदरवाइज यू आर नॉट हैप्पी। तो ये जो चीज अंदर में जागी है, कहां से जागी, ये पहले ये चीज नहीं थी, थी कभी बहुत पहले, लेकिन लोगों ने ये सीख लिया था कि हम इसके अंदर रहे। अब ये जो जागा उसके कारण बड़ी विकृतियां भी आ गई, क्योंकि हमारा ये उच्च प्राण इधर उधर उस चीज को ढूंढता है। लेकिन वास्तव में इसके अंदर जो भूख है, जो प्यास है, वो उचित है, लेकिन उसका रूट गलत है, क्योंकि वो भटक रहा है, वो अपने सीमा के अतिक्रमण नहीं कर रहा है, उसी सीमा में ढूंढ रहा है कि ये पॉसिबल है परफेक्शन। लेकिन जैसा कि हम इस कैंटो में देखते हैं कि ये संभव नहीं है, आप उस सीमा के अंदर नहीं प्राप्त कर सकते, आपको इस सीमा के बियॉन्ड जाना है। तो ये काफी ठोकर के बाद, भटकने के बाद, जो उच्च प्राण है, ग्रेटर लाइफ है, महत प्राण है, वो ये जानता है कि जिस चीज को मैं, जिस एम्बिशन को सेटिस्फाई करना चाह रहा हूं, जो मेरी कल्पना में एक आदर्श जगत है, उसको मैं इन सीमाओं में नहीं प्राप्त कर सकता हूं, उसके लिए मुझे इसका अतिक्रमण करना पड़ेगा, इस सर्किल ऑफ कॉस्मिक इग्नोरेंस का। तो ये सारी चीजें यहां पर इसका वर्णन है। और अगर वो नहीं करेगा तो उसका जीवन एक परपेचुअल फ्रस्ट्रेशन में जीता रहता है। लेकिन चूंकि ये प्राण है तो वो इजिली छोड़ता नहीं है, वो आपको घुमाता रहेगा, नहीं इधर नहीं उधर, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे आप एक ऐसे मार्केट में चले गए हैं जिसका कोई अंतहीन है, और आपको ये दुकान पे नहीं मिली तो कोई कहेगा हमारे पास है, आप वहाँ जा रहे हैं, फिर आपने कोई चीज़ खरीद ली, थोड़े समय बाद आपको ये बताया जाए, पता चलेगा कि नहीं ये तो वो चीज़ नहीं है, ये भी टॉय मेरा टूट गया, फिर आप फिर से आते हो। तो इस तरह से ये
एक अंतहीन सिलसिला है और कभी कभी योग की यात्रा में, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है इवोल्यूशन की, लेकिन कभी कभी एक योगी जब इसमें फंस जाता है तो शेरविंद उसको कहते हैं इन द इंटरमीडिएट जोन। और अगर आपने चैत्य को प्राप्त कर लिया है तो एक बात अलग है, नहीं तो उसमें इतने सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपको कलर करके ये बता देंगे कि आपने भगवान को पा लिया है, लेकिन आपने भगवान को नहीं पाया है। दे आर ऑल एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंटरमीडिएट जोन, जिसका वर्णन सावित्री में बाद में आता है जब सावित्री एंट्री इनटू द इनर कंट्रीज। तो ये जो सारा वाइटल वर्ल्ड है, हम सेम चीज हम देखते हैं जब सावित्री इनर कंट्रीज में प्रवेश करती हैं और वो द हेड ऑफ लाइफ, जायंट हेड ऑफ लाइफ, ये सारा कंप्रेस्ड रूप में हम देखते हैं कि उसमें वो कहीं एक और वो जिसको हम लोग कहते हैं हवा में किले बनाना, फैंटेसी वर्ल्ड है, और वो फैंटेसी वर्ल्ड इतनी रियल होती है कि आपको पूरा विश्वास हो जाता है, कन्विंस हो जाते हैं कि यही सच है। लेकिन इट टेक्स टाइम, समटाइम्स शेरविन बताते हैं कि कभी कभी एक पूरा जीवन व्यक्ति उस फैंटेसी वर्ल्ड से नहीं निकल पाता है, जिसमें वो अब एक प्रकार का पागलपन होता है। कई कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने भी देखे हैं, जो ये मानते हैं कि आई एम सुप्रीम, हमारा सुप्रीम के साथ आइडेंटिफिकेशन हो गया, और बड़ा मुश्किल है उनको कन्विंस करना। खासकर ये कब होता है, जब हमारे अंदर एक वैनिटी होती है। एक तो ये इससे माँ बार बार कहती हैं सचेत रहना, जब एक वैनिटी होती है कि मैं कुछ हूँ, तो वहाँ पे आप पतन का मार्ग खोल रहे हैं, और आप फंस गए तो निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी वो वैनिटी को ये फोर्सेज यूज करेंगी और एग्रेंडाइज करेंगी। कोई भी चीज़ें जो आपको एग्रेंडाइज कर रही हैं कि आप बहुत महान हैं, आप तो अद्भुत हैं, तो आप सचेत हो जाइए। उसी प्रकार से डेप्रिशिएटरी, क्योंकि वो पहले ग्रैंडाइज करेंगी फिर आपको नीचे, वो दोनों प्रोसेस ट्राई करती हैं। और दूसरी चीज़ जो हेल्प करती है, वैनिटी बहुत हार्मफुल होती है, जो हेल्प करती है वही ह्यूमिलिटी, क्योंकि आपको कोई भी अनुभव हो रहा है, कोई भी आपके अंदर ये विनम्रता है कि नहीं इसके परे कोई चीज़ है, मैं यहाँ पर रुकूँगा नहीं, और जहाँ रुक जाता है व्यक्ति कि मुझे ये विजन्स हो रहे हैं, खासकर ये योगियों के अंदर विजन्स एंड वॉइसेस के रूप में जब ये चीज़ें काम करने लगती हैं, तो मतलब वो बहुत ही डेंजरस स्टेट में चले गए हैं, क्योंकि वो विजन्स उसको कुछ भी कह देंगे कि आई नो एक्सपीरियंसेस ऑफ समबडी। किसी ने टॉक्स, ये आजकल एक नई चीज़ है, तो कोई व्यक्ति टॉक देना चाहता था लाइव डिवाइन के ऊपर, तो उसने टेलीग्राम भेजा, माता जी को चिट्ठी लिखी, आई वांट योर परमिशन, तो परमिशन नहीं आई। तो कुछ समय बाद फिर से उसने लिखा कि मैंने टॉक देना शुरू कर लिया है, आपके मौन को मैंने स्वीकृति समझा है, लेकिन माँ ने टेलीग्राम भेजा था कि क्यों उसने टॉक देना शुरू किया, उसने एक श्री कृष्ण का विजन देखा। तो वो लिखता है कि मुझे श्री कृष्णा केम एंड टोल्ड मी दैट यू शुड गिव टॉक्स, लेकिन ये कुछ नहीं था, ये एक वैनिटी थी जो एग्रेंडाइजेशन की तरफ ले जा रही थी। और माँ ने टेलीग्राम भेजा, टेल हिम इट इज नॉट श्री कृष्णा, इट इज अ होस्टाइल बीइंग हु हैज टेकन द फॉर्म, और वो उसको ले जा रहा है एक दूसरी दिशा में। सो वन शुड बी सो केयरफुल इन दीज मैटर्स, इसीलिए शेरविंद हमको विस्तार में बता रहे हैं, नहीं तो हम रुक जाते हैं एक किसी भी एक सीढ़ी पर, हाइएस्ट को मिस कर देते हैं और हमारी यात्रा आधी अधूरी रह जाती है। तो यहाँ पर उसी का वर्णन है ग्रेटर लाइफ का, हम लोग थोड़ा सा जगह जगह से पढ़ेंगे। एक ऐसा स्थान है जहाँ सीकिंग है, ग्रेटर सीकिंग है, प्राण के अंदर एक प्यास जो है वो लग असली चीज की रही है, लेकिन वो बहिर्मुखी है, वो जानता नहीं है कि वो मुझे कहाँ मिलेगी। तो जो कॉस्मिक इग्नोरेंस है प्राण का, वो उसके लिए प्रस्तुत करता है, ये है, ये है, ये है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो सीकिंग बहुत अच्छी है, और शेरविन इसीलिए बार बार कहते हैं सेंटिमेंटल आइडियलिज्म कैन नॉट क्रिएट ए बेटर वर्ल्ड। हम लोग यही चाहते हैं, सेंटिमेंटल आइडियलिज्म। और ये वो किसके कंटेक्स्ट में कहते हैं, देखिए कितने हम लोग भ्रमित हो सकते हैं। रिसेंटली टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हुआ और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे वो थीसिस, अपने स्टूडेंट की भी थीसिस उड़ाते थे। श्री अरविंद की राइटिंग्स उन्होंने सदैव उठा करके कॉपी करी हैं। और ये इवनिंग टॉक्स में जब श्री अरविंद से पूछा गया तो श्री अरविंद मुस्कुराए, कहते हैं एनीवेज इट्स लेट द वर्ड, हाउ डज इट मैटर, अच्छी चीज है अगर मेरी राइटिंग उठा करके दे रहा है, पर वो श्री अरविंद की महानता और विनम्रता है। लेकिन अंदर में क्या है, एम्बिशन टू बी ग्रेट, टू बी द प्रेसिडेंट, टू बी इन रॉयल कैरेज, टू गेट ए सैल्यूट फ्रॉम द ब्रिटिश वो, तो ये एक, लेकिन हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं इन चीजों के साथ, हमको लगता है यही अल्टीमेट है, उपलब्धि है। तो इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस के साथ भी यही, तो लोग बड़े कि वो एक एक ऐसा जगत जिसके अंदर ये हो वो हो, तो श्री अरविंद कहते हैं ही इज ए सेंटिमेंटल आइडियलिस्ट। सेंटिमेंटल आइडियलिज्म के आधार पर आप नया जगत नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार हम देखते हैं एक नया वर्ड आजकल आया है, स्पिरिचुअल एक्टिविज्म। तो स्पिरिचुअल एक्टिविज्म में क्या होता है कि आप कोई स्पिरिचुअल स्पेस में रहते हैं, आप देखते हैं वहां बहुत सारी चीजें हैं जो सही नहीं है, तो आपको लगता है मैं सही कर दूंगा। आपकी भावना अच्छी है लेकिन कैसे सही करेंगे? प्रकृति है, जिस प्रकृति को हमने बनाया नहीं, वो अज्ञान जिसके बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं है, तो हमारे हाथ में केवल एक ही चीज है, वो है स्वयं को हम सही कर दे, वो भी हम नहीं कर सकते, डिवाइन मदर हमको करेक्ट कर सकती है। तो ये सारी चीजें सेंटिमेंटल आइडियलिज्म, कल्पनाशील फैंटेसी वर्ल्ड, इमेजिनेशंस, इमोशंस, एम्बिशन, ये सब इस वृहत क्षेत्र के अंदर है, लेकिन इसके अंदर एक ग्रेटर सीकिंग है, ये इसलिए ये अलाउड है। ये एक इंटरमीडियरी स्टेप है, आप लोअर वाइटल से छलांग नहीं लगा सकते हैं सीधा डिवाइन लाइफ की ओर। आपको अपने अंदर कम से कम एक हीरोइक सोल को जागृत करना है जो एक कॉज के लिए लड़ रही है, एक कॉज के लिए मर रही है, इससे आपका प्राण पोषित होता हुआ आगे बढ़ता है। एक ऐसे आदर्श प्रेम की कल्पना करनी है जो कभी क्षय ना हो, आप नहीं कर सकते उसको एस्टैब्लिश बाय दीज मींस, लेकिन कम से कम आपके एक कल्पना में आया, आपने प्रयास किया, और प्रयास किया तो लाइक ऑल स्टोरीज, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, ऑल दी स्टोरीज वेयर देयर इज ए कंसेप्शन ऑफ आइडियल लव, वो फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनका आधार गलत है, प्राण के आधार पर ये संभव नहीं। इसलिए श्री अरविंद से जब दिलीप कुमार रॉय ने पूछा, सुना है कि आप मित्रता के खिलाफ हो, आपको अच्छा नहीं लगता है जब लोग आपस में मित्रता रखते हैं, तो श्री अरविंद कहते हैं किसने तुम्हें ये कहा है? आगे वो कहते हैं लव, फ्रेंडशिप, अफेक्शन, केयर, फिडेलिटी, दे आर इंडिस्पेंसिबल नोट्स इन द परफेक्शन दैट वी आर सीकिंग। जिस परफेक्शन की हम सीख कर रहे हैं वो एक ट्रूथ बेयर परफेक्शन नहीं है, ये तो इंडिस्पेंसिबल नोट्स हैं। लेकिन शेरविंद आगे कहते हैं, लेकिन हमने अपने अनुभव से पाया है कि इसको आप केवल चैत्य के आधार पर या सत्य के आधार पर ही एस्टैब्लिश कर सकते हो, ये केवल विशफुल थिंकिंग से नहीं होगा। इसलिए चूंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये आइडियल्स टूटे, पीड़ा हो, कष्ट हो, हम नहीं चाहते ऐसा हो, इसलिए हम सुप्रामेंटल ट्रूथ की बात करते हैं कि पहले तुम वहां पहुंचो या कम से कम चैत्य को आधार बनाओ जीवन का, उसके बाद इस संभावना को तुम टटोल सकते हो, नहीं तो यू विल सफर। तो वो बहुत सुंदर पत्र है, लेकिन वो ग्रेटर सीकिंग पेज 173-175, कैंटो स्टार्ट फ्रॉम 173। देन डॉन्ड ए ग्रेटर सीकिंग, ब्रॉडेंड स्काई, ए जर्नी अंडर विंग्स ऑफ ब्रूडिंग फोर्स, ए ट्वाइलाइट ब्यूटी ट्रेम्बल्ड अंडर इट्स स्पियर एंड द थ्रॉब ऑफ प्रॉमिस ऑफ ए वाइडर लाइफ। प्रॉमिस है इस जगत में, पर केवल प्रॉमिस है, प्रॉमिस की परिपूर्णता नहीं है, क्योंकि उसके पास मींस नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। तो प्रॉमिस है बट वो प्रॉमिसेस आर। देन स्लोली रोज ए ग्रेट एंड डाउटिंग सन एंड इन इट्स लाइट शी मेड ऑफ सेल्फ ए वर्ल्ड। अब यहां पर आगे चल के इसका जगह जगह से हम लोग, अब ये सारे जो हम लोगों के अंदर ये भावनाएं उठती हैं या इंपल्सेस उठती हैं, ये जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका एक टाइपल वर्ल्ड है, एक ऐसा वर्ल्ड है जहां ये चीजें नेचुरल है, वहां के जो बीइंग्स हैं उसी प्रकार से जीते हैं। गंधर्व लोग जो मिड वर्ल्ड है, तो उसके बीइंग्स आर लाइक दैट, वहां गुड और ईविल का कंसेप्ट नहीं है। वहां पे वो बीइंग्स है जिनके अंदर एक और आप देखें गंधर्व, एक और तो बहुत माइटी होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, जिससे प्लेन जहां स्ट्रांग दैत्य भी हैं और देवता भी हैं, लेकिन साथ ही वो सेलेस्टियल म्यूजिशियन, आर्ट, पोइट्री, म्यूजिक, बहुत कुछ वाइटल वर्ल्ड से प्रेरित होकर आती है, कई सारे आर्ट फॉर्म्स। दिस रेलम इंस्पायर्स अस विद अवर वास्टर होप्स, इट्स फोर्सेस हैव मेड लैंडिंग्स ऑन अवर ग्लोब। वो उस लोक के कुछ देवता, कुछ बीइंग्स, इवन कुछ दैत्य मानव रूप में जन्म लेते हैं और कुछ क्षणों के लिए मानव चेतना को एक नया स्वप्न दिखा कर चले जाते हैं। स्वप्न पूरा होगा कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन मनुष्य के स्वप्न को वो पोषित कर देते हैं। इट्स साइंस हैव ट्रेस देयर पैटर्न इन अवर लाइव्स, इट लेंड्स ए सॉवरेन मूवमेंट टू अवर फेट। सॉवरेन मूवमेंट, वरना फेट क्या है? जन्मा, अपने लिए जिया, मर गया। लेकिन सॉवरेन मूवमेंट क्या है कि प्रयास किया उसने, प्रयास। इस लोक में विक्ट्री से ज्यादा एफर्ट का जॉय है। यू ट्राइड, अटेम्प्टेड। अब ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं इसके हर क्षेत्र में, जहां लोगों ने प्रयास किया, ऐसा प्रयास किया जो लगता था असंभव, और असंभव, दे फेल्ड इन दैट प्रोसेस, लेकिन उन्होंने रास्ता खोला आने वाले समय के लिए, सो प्रयास किया। इट्स एरेंट वेव्स मोटिव अवर लाइफ्स ह्यूज सर्ज। एरेंट है, उसको पता नहीं है कि कैसे प्राप्त हो, लेकिन उसको प्रयास करना है, और प्रयास करके ही वो धीरे धीरे हमारे प्राण के अंदर एक ऐसा उछाल आता है। जैसे इसकी एरेंट वेव्स को हम ऐसे कल्पना करें कि वो क्या करना चाह रही है, चंद्रमा को पकड़ना। क्यों? चंद्रमा की छाया को वो देख रही है। तो जब फुल मून होता है तो वो कहती, अरे ये तो है, लेकिन वो कहाँ है चंद्रमा। वो ट्राई करती है उसको पकड़ने के लिए, तो एक ऊंची छलांग लगाती है, और वो कितना अद्भुत दृश्य होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कोलैप्स कर जाती हैं। तो इट इज लाइक दैट, दे कैन नॉट फाइंड इन दिस वे। सो बट इट इज एन एफर्ट दैट दी वेव्स मेक। तो ग्रेटर लाइफ इज लाइक दैट। ऑल दैट वी सीक फॉर इज प्रीफिगर्ड देयर। जो ये हमारी ग्रेटर सीकिंग्स हैं उस जगत में वो फुलफिल्ड होती हैं, लेकिन ये परफेक्शन का जगत नहीं है। कई लोग इस जगत में प्रवेश करके उनको भ्रांति हो सकती है कि हमने परफेक्ट वर्ल्ड देख लिया है, लेकिन ये परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है, ये एक टाइपल वर्ल्ड है जो कॉस्मिक इग्नोरेंस का एक हिस्सा है। ऑल वी हैव नॉट नोन नॉर एवर सॉट विच येट वन डे मस्ट बी बॉर्न इन ह्यूमन हार्ट्स दैट द टाइमलेस में फुलफिल इट सेल्फ इन थिंग्स। अब उसका प्रयास क्या रहता है? दिस इज हर सीक्रेट एंड इम्पॉसिबल टास्क टू कैच द बाउंडलेस इन ए नेट ऑफ बर्थ टू कास्ट द स्पिरिट इन टू फिजिकल फॉर्म। क्योंकि जो ये हायर प्राण है वो फिर भी धरती से जुड़ा हुआ है, वो वहां पर उस चीज को एस्टेब्लिश करना चाहता है। टू लेंड स्पीच एंड थॉट टू द इनएफेबल शी इज पुश्ड टू रिवील द एवर अनमैनिफेस्ट येट बाय हर स्किल द इम्पॉसिबल हैज बीन डन। तो ये अब अगर हम पूरे मनुष्यता के इतिहास को देखें और ऋषि अरविंद किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम देखें कि अब तक एक हायर प्राण ने चेष्टा की है, इवन एक ग्रेटर माइंड ने चेष्टा की है सत्य को पकड़ने की और धरती पर एक सत्य स्थापित करने की, लेकिन वो स्थापित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कॉस्मिक इग्नोरेंस के सर्किल में, यू कैनॉट डू इट। आप एस्पायर तो कर सकते हो, एक जोक आता था ना पहले कि दिस यूनिवर्सिटी अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, द अदर यूनिवर्सिटी रिप्लाई फर्स्ट देन अप्लाई। मतलब कहने का कि एक यूनिवर्सिटी जहां आप कितना अप्लाई करिए आपको कोई उत्तर नहीं आता है, दूसरा है कि आपको पहले से फिक्स कर दिया जाता है तुम्हारे लिए सीट रिजर्व्ड है तुम आप अप्लाई कर दो, बहुत मुश्किल है कहना विच इज बेटर। तो अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई। तो एस्पिरेशन करना, मनुष्य ने अगर देखें हम हजारों दस हजारों वर्ष से कभी एक आइडियल वर्ल्ड की कल्पना की, कैसे हमारे गीत हैं जिनके अंदर आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, आंसू भी ना हो गम भी ना हो जहां प्यार ही प्यार पले, वेरी ब्यूटिफुल टचिंग। लेकिन क्यों नहीं हो पाता है मनुष्य का जीवन वैसा? क्योंकि उसके पास वो ट्रुथ का बेसिस नहीं है, वो शिफ्टिंग सैंड पर। शिफ्टिंग सैंड पे क्या होता है? इस भूमि को कहा गया है शिफ्टिंग। अब नॉर्मली प्राण की भूमि ही शिफ्टिंग सैंड है, स्टेबल सैंड केवल दो जगह है, एक मैटर के अंदर, लेकिन वो दलदल में है तो कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन वो स्टेबल है, पर उस नीचे दलदल है, तो अगर आप नीचे में अगर उसकी सॉलिड फाउंडेशन नहीं बनाएंगे तो आप कोलैप्स कर जाएगा, वो करता है एक जीवन में। या फिर ट्रुथ कॉन्शियसनेस सुपर माइंड में है, दो ही जगह आपको मिलेगी वो भूमि, सॉलिड भूमि, लेकिन ये वाली कोलेप्सेबल है अनलेस यहां पर भी उसके नीचे आधार देने के लिए सुपर माइंड आकर के उसको बेस बना दे, विच इज व्हाट शिवबिंदु इज स्पीकिंग अबाउट। लेकिन जो बाकी भूमि है, आपने घर बनाया, शुरू कर दिया, सब मिल गया, पट्टा हो गया, आपकी भूमि ही शिफ्ट कर रही है, शिफ्ट कर गई, कोलैप्स कर गया। अभी हाल में हुआ ना कहीं ऐसे, अचानक अर्थक्वेक आ गया आपने, अच्छा तो शिफ्टिंग सैंड्स। अब ये तो एक ऑर्डिनरी लोअर वाइटल में भी शिफ्टिंग सैंड्स है, हायर वाइटल में, ग्रेटर वाइटल में तो इतना उछाल है, आप कैसे बनाएंगे? आज आपने प्रॉमिस किया है कल तोड़ेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर वाइटल का ये समस्या है कि उसके पास वो न्यू हाउ नो हाउ नहीं है टू फाइंड न्यू बॉडीज फॉर द इनफिनिट एंड इमेज ऑफ द अनइमेजिनेबल। शी हैज लोर्ड द इटर्नल इनटू द आर्म्स ऑफ टाइम। तो वो क्या करता है, ऑलमोस्ट भगवान खींचे चले जाते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं कि इतनी सुंदर इसके अंदर भाव है तो आ जाते हैं, लेकिन एक सीमा पर आके रुक जाते हैं क्योंकि अभी तैयारी पूरी नहीं है। और इसके देवता कौन है इस ग्रेटर लाइफ के? एक्चुअली ये चैत्य पीछे खड़ा होता है इस प्राण के पीछे, ये जो आप हार्ट के रीजन को अगर देखें, तो जब तक चैत्य डायरेक्टली भगवान की ओर नहीं मुड़ता तब तक उसके अंदर जो अभिप्सा का रूप होता है वो क्या होता है, गुड ट्रूथ ब्यूटी सत्यम शिवम सुंदरम। तो यहां उसका भी वर्णन है, दिस ग्रेटर लाइफ इज इनेमर्ड ऑफ द अनसीन। उसको चाहिए भगवान, चाहिए दिव्यता, चाहिए, लेकिन किस लिए? इट कॉल्स टू सम हाईएस्ट लाइट बियॉन्ड इट्स रीच। इट कैन फील द साइलेंस दैट एब्जॉल्व्स द सोल। इट फील्स ए सेवियर टच ए रे डिवाइन ब्यूटी एंड गुड एंड ट्रूथ इट्स गॉड हेड्स आर। सिंथेसिस ऑफ योग में शेरविंद बताते हैं कि चैत्य के ये दो स्टेजेस हैं इवोल्यूशन के। पहली स्टेज में वो ह्यूमन बीइंग के तरफ मुड़ता है, उस लव को जो महसूस करता है वो ह्यूमैनिटी में ढूंढता है, और इसके वो भगवान को ये तीन रूप देता है, ट्रूथ गुड एंड ब्यूटी, उस लव को। बाद में ये ऊपर की ओर मुड़ता है, ए लोनली सोल पैशंस फॉर द एलोन। तीसरी स्टेज है वो बताते हैं कि जब वो प्राप्त करने के बाद अब वो सत्य से आम डाकर इस भूमि पर आता है। सो दीज आर द थ्री स्टेजेस। एक जब आप टोटल इग्नोरेंस में हैं लेकिन सीख कर रहे हैं, सीख वही कर रहे हैं बट यू कांट फाइंड इट। फिर दूसरा है व्हेन यू हैव फाउंड इट बाय एक नैरो पैसेज से जाके आपने, उस समय यू हैव टू कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग, और आपने वो प्राप्त कर लिया। थर्ड स्टेज इज व्हेन यू आर रिटर्निंग बैक लाइक द फिनिक्स बर्ड, कि नाउ यू हैव दैट, नाउ यू हैव टू एक्सप्रेस इट एंड मैनिफेस्ट इट। लेकिन दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो फॉर्म्स हैं फिजिकल वाइटल वो अभी तैयार नहीं है। ए चाइल्ड ऑफ हेवन हु नेवर सॉ हिज होम, ये इसकी पीड़ा है। आया वहां से है वो कॉन्शियसनेस फोर्स, वही उसका जन्म स्थान है, वो इसीलिए उसके अंदर स्वप्न है। जैसे बच्चा होता है ना, आप खो गया तो पूछेंगे लोग कि घर बता, तो क्या बताएगा? बोले बहुत बड़ा घर है, बहुत सुंदर घर है, एड्रेस एड्रेस नहीं मालूम। पेरेंट्स के बारे में बता, मम्मी मेरी बहुत लविंग है, पापा पापा तो बस क्या बताऊं, पूरा प्रेम नछावर कर देते हैं, एड्रेस एड्रेस नहीं मालूम। अब उसको ये कहीं स्वप्न है कि एक सुंदर घर है जहां से वो आया है, लेकिन वो भूल गया है एड्रेस, इसीलिए वो जगह जगह घूम रहा है कि कोई मुझे घर बता दे, कोई मुझे घर बता दे। अब जब उसी को नहीं पता है तो कौन बता सकता है? जो जाके उस घर से आया और पहचानेगा कि यस तुम भी उसी घर के हो, मैं भी वहीं से आ रहा हूं, हमारा घराना एक है, हम भी कभी मेले में घूमे थे लेकिन हमने घर ढूंढ। शेरविंद बताते हैं, जब आप देखो महात्मा कुटुमी, बड़ी इंटरेस्टिंग पोयम है शेरविंद की, तो बताते हैं पूरी इवोल्यूशन की साइकिल। तो कुटुमी जो महात्मा है, ये थियोसॉफी में कंसेप्ट है लेकिन शेरविंद इसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं वो कुटुमी बता रहे हैं अपनी जीवन गाथा, कहते हैं एक समय था मैं भी असुर राक्षसों की तरह जीवन में यही सब ढूंढता था, छोटा मोटा सुख ढूंढता था, फिर मेरे अंदर आया कि नहीं आई मस्ट सीक समथिंग हायर। तो मैं गया, योग मैंने अपनाया। कौन सा योग? कहते हैं हठ योग। कौन सा हठ योग? कहते वो नहीं जो कलयुग में मनुष्य करते हैं, वो योग जो रावण ने किया था, हिरण्यकश्यप ने किया था, ध्रुव ने किया था, वो हठ योग, ओरिजिनल हठ योग, द योगा ऑफ द ग्रेट लेमुरियन किंग्स। मैंने 3 दिन में किया जो 3 जन्मों में बड़ी कठिनाई से मनुष्य प्राप्त करते हैं। मेरे अंदर बहुत कुछ हुआ, परिवर्तन हुआ, फिर मैं आता हूं कि अब आई एम रेडी फॉर बींग द महात्मा, तो नहीं, फिर उन्होंने कहते नहीं तुम राजयोग करो, तो राजयोग करते हैं। फिर अगेन वो बताते हैं कि वो राजयोग नहीं जो जिसको कलयुग में राजयोग कहा जाता है, द योगा ऑफ द ग्रेट अटलांटिक्स किंग्स, वो जो प्रहलाद ने किया। राजयोग इज अबाउट द माइंड कंट्रोल, अपने पूरे वो इंट्रा साइकिक चीजों के ऊपर, भावना मन, इस पर जब हम कंट्रोल करते हैं, जब हम साइकिक सेल्फ के प्रति अवेयर हो जाते हैं तो राजयोग है, जब हम फिजिकल सेल्फ के प्रति अवेयर हैं तो हठ योग है, और जब इसके परे हम चैत्य के प्रति अवेक हैं तो वो अध्यात्म योग है। सो दीज आर द थ्री स्टेप्स। तो राजयोग में हम अपने मन प्राण इमोशंस इसके प्रति, तो वो कहते हैं कि मैंने वो भी 3 दिन में किया जो 3 जन्मों में करते हैं ग्रेट बींग्स। तो वो आते हैं कि आई हैव नाउ ऑल द सिद्धीज एंड पावर्स, तो द्वैपायन व्यास के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि देखते हैं और अपनी लॉक्स को हिलाते हैं, कहते हैं नहीं अभी तुम शुद्ध नहीं हो, ये सब तुम्हें प्राप्त हो गया, शुद्ध नहीं हो, तो मैं क्या करूँ शुद्ध होने के लिए? कहते हैं कृष्ण को ढूंढो। इट्स ए वेरी सिंबॉलिक स्टोरी। तो फिर वो निकल जाते हैं और अपनी पूरी शक्ति को डालते हैं कि कृष्ण कहाँ हैं, हस्तिनापुर के महल में नहीं मिलते हैं, कौरवों के साथ नहीं, पांडवों के साथ नहीं, कहीं नहीं मिलते हैं, वो आश्रमों में नहीं मिलते हैं। कहते हैं ये हैं कहाँ? तो वो देखते हैं कि एक माउंटेन पर कोई अहीर है जो नाच रहा है, मस्त होके आनंद में है, तो वहां वो श्री कृष्ण को देखते हैं, तो वो भाग करके जाते हैं कि आपसे मुझे कुछ प्राप्त करना है। प्राप्त करना है? तो इतना कुछ लेके आया अपने साथ, जा। तो ही किक्स हिम एंड ऑल द पावर एवरीथिंग गोज अवे फ्रॉम हिम। सो ये स्टेज है जब आप बच्चे की तरह बन जाते हो, विनम्रता आती है आपको कि यू आर नथिंग एंड नोबडी, तब श्री कृष्ण उनको वापस देते हैं ये सारी शक्तियां, कहते जा ले ले, भिख मंगे, यू टेक इट फ्रॉम मी। जब ये भाव आता है कि ऑल दिस बिलोंग्स टू द डिवाइन एंड यू रिसीव फ्रॉम द डिवाइन, तब वो तैयार होते हैं। फिर जब वो आते हैं तब व्यास कहते हैं नाउ यू आर रेडी टू हेल्प मैनकाइंड एंड अर्थ टिल, एक समय आएगा जब स्वयं भगवान आएंगे, अवतार लेंगे, तब तक तुम मनुष्य के अंदर इस प्यास को, भूख को पोषित करो परफेक्शन की। फिर व्हेन श्री कृष्णा कम्स, एथिज्म इज ब्लास्टेड आउट बाय नॉलेज इन द वर्ल्ड एंड ये सारा संसार एक नए युग में प्रवेश करेगा। लेकिन तब तक वो नचर करने का काम ये ग्रेटर लाइफ करती है, क्योंकि ये नहीं होगी तो मनुष्य तो फिर हताश होकर पड़ा रहेगा। तो इसका ये बहुत बड़ा रोल है। इट्स ग्रेटनेस इज टू सीक, इट कैन ओनली नियर एंड टच, इट कैन नॉट होल्ड, इट कैन ओनली स्ट्रेन टूवर्ड सम ब्राइट एक्सट्रीम। Its greatness is to seek and to create. यही उसको दिया हुआ है कि वो जाएगी, लगेगा कि I am there, but it will slip from the hands. अब ये and it goes very far. So, लेकिन वो एकत्व इसमें missing है। आप अगर सृष्टि को आधार क्या होना चाहिए, अनेकत्व के आधार पर आप नहीं बना सकते हैं। आपको पहले उस एकत्व में प्रवेश करना है, oneness में प्रवेश करना है। सावित्री का यही स्ट्रेंथ है, वो मृत्यु से लड़ती है किसके लिए, सत्यवान के लिए, कुछ रिप्रेजेंटेटिव सत्यवान के लिए। लेकिन आधार क्या है? टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव। उन्होंने ये स्टेज ऑलरेडी क्रॉस कर दी है। अगर आपके अंदर एक का आधार नहीं है तो आप अनेकत्व में भटक जाएंगे। सो यहां पर इसका भाव है पेज 183 पर। बट वॉट शी नीडेड मोस्ट She cannot build. All shown is a figure or copy of the truth, but the real veils from her its mystic face. All else she finds, there lacks eternity. All is sought out, but missed the infinite. यानी आप सीमा, cosmic ignorance के घेरे में हो। तो जब तक आप पाओगे नहीं उसको, तो आप बिल्ड नहीं कर सकते हो। इसीलिए एक टाइम आता है जब आपको इवन आइक्नोक्लास्ट की एक जगह होती है, तो एक टाइम आता है जब आपको अटरली इन्फिनिट में प्रवेश करना है। बिना उसे प्रवेश किए हुए फाइनाइट वर्ल्ड में आप परफेक्शन को क्रिएट नहीं कर सकते हो। सो पहला प्रयास मनुष्य का वही होना चाहिए। अब पेज 184 पे, दिस वाइडर वर्ल्ड अवर ग्रेटर मूवमेंट्स गिव्स, its strong formations build our growing selves, its creatures are our brighter replicas, complete the types we only initiate and are securely what we strive to be. अब स्टोरी आती महाभारत में, भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की थी, उनका नाम ही इसलिए भीष्म। अब भीष्म कौन है, वसु है, मिड वर्ल्ड के बीइंग्स है, वो भी ऐसी वर्ल्ड से आए, ग्रेटर लाइफ, तो ऐसी प्रतिज्ञा करके उसको पूरा कर सकते हैं टिल द एंड। अब भीष्म एक आदर्श बन गया लोगों का कि अगर प्रतिज्ञा करनी है तो भीष्म जैसी करो, बिकॉज यू नो ही केम फ्रॉम दैट हायर वर्ल्ड, वो सत्य नहीं है लेकिन फिर भी एक उनकी उपस्थिति ने एक संसार को एक ग्रेट मूवमेंट दिया कि ओके वी कैन ट्राई टू अचीव समथिंग विच इज मार्वेलस, विच इज अद्भुत, यानी इस प्रकार के जो बीइंग्स हैं जो इस मिड वर्ल्ड से आते हैं वो धरती के ऊपर कुछ ऐसी छाप, कुछ ऐसी चीज छोड़ जाते हैं जो हमें काफी समय तक पोषित करती रहती है। और इस वर्ल्ड में क्या है, ग्रैंडियोर स्टोर, देयर इज केप्ट ग्रैंडियोर स्टोर द हीरोज मोल्ड, दिस सोल इज द वॉचफुल बिल्डर ऑफ इट्स फेट, नन इज ए स्पिरिट इनडिफरेंट एंड इनर्ट, दे चूज देयर साइड, दे सी द गॉड दे अडोर। अब ये तो सब हम लोग देखते हैं जब इलियन पढ़े या महाभारत पढ़े, उसमें कोई भी साधारण कैरेक्टर नहीं है क्यों लड़ने जा रहे हैं, साधारण व्यक्ति बोलेगा ये क्या है, क्यों लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आप पूछो पेंथेसिलिया कैसे शिरविन ने क्रिएट किया है कैरेक्टर, पेंथेसिलिया एक इंडो एशियाटिक वुमेन है, यूरोप की लड़ाई में क्यों आ रही है, उसका कोई लेना देना नहीं है ग्रीक्स के साथ, तो उसे पूछते हैं कि तुम क्यों आई हो लड़ने, सबसे सभा में प्राइम पूछते हैं कि क्यों लड़ना है, लड़े कि नहीं लड़े, सब अपना पक्ष रख रहे हैं, पेंथेसिलिया से पूछते हैं कि लड़े कि नहीं लड़े, कहती आप लड़ो मत लड़ो मैं तो लड़ूंगी, क्यों लड़ोगी तुम, मुझे एचलिस से युद्ध करना है, क्यों, मैंने सुना है कि उसके जैसा योद्धा नहीं हुआ कोई, मुझे तो युद्ध करना है। अब देखिए हीरोज मोल्ड, अभिमन्यु, प्रैक्टिकल व्यक्ति कभी ऐसा करेगा, वो कहेगा कि मुझे प्रवेश तो आता है भैया लेकिन मुझे चाचा, लेकिन मैं आना ताऊजी, मुझे आना ग्रैंड क्या थे, लेकिन मुझे वापस बाहर आना नहीं आता है, तो आप ऐसा करो मुझे आप साथ में, प्रैक्टिकल व्यक्ति यही कहेगा ना, मैं आप एकदम मेरे साथ साथ चलो फ्लैंक करते हुए तो मैं प्रयास कर सकता हूं। लेकिन अभिमन्यु ये चोज द हीरोज मोल्ड, चला गया, देखा भी नहीं कि मेरे ताऊ रुके हैं कि नहीं, ही वेंट इनसाइड बिकॉज दिस इज द हीरोइक मोल्ड। और आप देखें अभी भी ये आज तक ये घटनाएं होती हैं, इवन रिसेंटली जो ये चाइनीज उसकी बात हो रही थी, अगर आप देखें तो ये सब लोग सोच रहे हैं कि क्या करें क्या करें, चाइनीज आ गए हैं, आप डिफेंस कर रहे हैं अपने, डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन सोच देखिए यही डिफरेंस होता है, हीरोज मोल्ड क्या होता है, पहले 62 में जब हुआ डिफेंस, हमको अपनी डिफेंस पोजिशन टाइटन करो, इस बार क्या चेंज हो गया, इस बार चेंज ये हुआ जो चेस का एक नियम है, बोरिस नाम सुना होगा, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो नहीं कहा नहीं ये पहाड़ियां है ना इसको, ये अनऑक्यूपाइड है, चीन कहता है ये हमारी है हम इनको ऑक्यूपाई करते हैं, तो दे आर ऑन ए डिसएडवांटेज, ये कहने के लिए सोचने के लिए बहुत आपको कलेजा चाहिए, करेज चाहिए। तो इट सीम्स आज ही मैं ये पढ़ रहा था न्यूज, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बड़ी रिलायबल उसमें, कि जब ये डिस्कशन चल रहा था लद्दाख में कि क्या करें, उनकी पोजीशन ये है ये है, यहाँ आ गए वहाँ आ गए, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये तो मैं सुन रहा हूँ इतनी देर से कि चाइनीज क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं हमें ये बताओ, तो सर हमने ये पोजीशंस डिफेंड करने के लिए, नहीं 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 इससे वो क्या मानेंगे, वो तो यही करेंगे, दो कदम आएंगे एक कदम पीछे जाएंगे। तब इनके दिमाग में आया नाउ उन्होंने उन पहाड़ियों पे चढ़े हैं, इंडियन जो माउंटेन डिवीजन के लोग हैं, ये आप कल्पना नहीं कर सकते, वो अकल्पनीय है, उन पहाड़ियों को उन्होंने ऑक्यूपाई किया है जहां चाइना कुड नॉट इमेजिन कि कोई वहां पर जाकर के बेस बना सकता है। इसी प्रकार की घटना हुई थी टाइगर हिल की समय, पता है कि ये डेथ के मुख में जा रहे हैं, हाइट से आपको गोली चलाने की जरूरत नहीं है, केवल पत्थर फेंकने की जरूरत है, सिटिंग डक्स, रात को उन्होंने ऐसी दीवार से चढ़े हैं जो एकदम लगभग फ्लैट है, कैसे चढ़े हैं इतनी ऊपर, हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने चढ़े होंगे, बट दिस इज अ हीरोज मोल्ड। साधारण व्यक्ति होता कहता कि ऐसा है सर मेरे को ना लूज मोशन हो रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे बुखार हो रखा है, मुझे छुट्टी, ऐसे होते थे, हम तो मिलिट्री में थे देखते थे, ऐसे भी लोग थे जो जरा घबरा जाते थे, और दूसरे थे कि हमको आज जाना है, नाइट फ्लाइंग करनी है, हाई स्पीड एयरक्राफ्ट हमको नाइट फ्लाइंग करनी है. क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो हीरोइक मोल्ड है. तो इनके कारण धरती के अंदर एक प्यास की, अरे वी शुड ऑल्सो ट्राई दैट. तो ये इन्होंने अब तक नचर किया. ग्रैंड्योर स्टोर, ए पिलग्रिमेज सेट्स आउट टू द डिवाइन लाइट, फॉर इवन इग्नोरेंस देयर एस्पायर्स टू नो, चूज देयर साइट्स. अब देखिए, अब कर्ण ने अपना साइड चुना, मैं तो लड़ूंगा दुर्योधन की तरफ से. क्यों लड़ोगे भाई, वो गलत है. हाँ गलत है. फिर मैंने जीवन में ये कहा है कि मैंने एक बार वचन दे दिया तो दे दिया. आप देखिए ग्रैंड्योर स्टोर है उसमें. श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मूर्खता है, लेकिन ही चूजेस दैट बिकॉज अगेन मिड वर्ल्ड के जो बीइंग्स हैं उनके अंदर ये होता है ग्रैंड्योर. अर्जुन सेम थिंग, ग्रेटर लाइफ, ये सारे इंद्र आदि देवता के जो ये अंश थे. ग्रैंड्योर स्टोर, कल शाम तक यदि मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा. श्री कृष्णा सेज यू कैनॉट टॉक लाइक दैट. बट द गुड थिंग इज, क्योंकि वो सरेंडर्ड हैं तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा. बट दिस इज दी ग्रैंड्योर. लेकिन वो देखिए आपको स्टोरी कितनी प्रेरित करती है. जब हम सुनते हैं कि कर्ण ने अपना कवच दान दे दिया, अब आप जो भी हो, आई मीन इट्स समथिंग बिकॉज एंड द चू ही चोज हिज साइड. ही न्यू कि मैं आई एम गोइंग टू लूज, द अधर्म इस तरफ है, पर चूज किया. तो ये उनकी एक whether for heaven or hell they must wage war, warriors of good they serve a shining cause, or are evil's soldiers in the pay of sin, for evil and good an equal tenure keep, wherever knowledge is ignorance twin. So us sthan pe, kyunki ye mid world hai, aap dekhenge dev aur asur hamesha ladte rehte hain. जब उनको रिकनसाइल करना होता है या जब विकट समस्या आ जाती है तो कहाँ जाते हैं, शिव जी के पास या नारायण के पास. असुरों को प्रॉब्लम आती है तो शिव जी के पास जाते हैं. देवताओं को प्रॉब्लम आती है वो शिव जी से डरते हैं. क्यों? शिव जी बोलेंगे तुमने भी गलती की थी ना, तो वो नारायण के पास जाते हैं. तो उनकी बिकॉज दे हैव टू गो टू द नेक्स्ट हायर लेवल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम. इस लेवल पे मिड वर्ल्ड में आप देखें जो हेवन और हेल हैं प्राण जगत के, वहां सदैव संग्राम चल रहा है. और दोनों तरफ यू विल सी ग्रैंड्योर. आप कभी महाराजा बलि को देखो, कभी लगेगा कि इंद्र तो उनके सामने पानी भर रहा है, जिस प्रकार का उनका वैभव और वो. सो ये जो मिडवर्ल्ड्स हैं इसके अंदर पाप और पुण्य परिभाषित नहीं होता है, इसके अंदर केवल ग्रैंड्योर है. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सही तरफ से लड़ रहे हो या गलत तरफ से लड़ रहे हो. ये इंपॉर्टेंट है कि आप लड़ रहे हो और हीरो की तरह लड़ रहे हो, कि आप अपना सेक्रीफाइस कर रहे हो. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपने किस कौन सा साइड लिया है, इट इज इरेलेवेंट फॉर देम. दे मस्ट वेज वॉर. और ये एक प्रोसेस है इवोल्यूशन की. श्री अरविंद इसको स्पष्ट करते हैं. इन आर्ट एंड लाइफ दे कैच द ऑल ब्यूटिफुल रे and make the world their radiant treasure house. Even common figures are with marvel robed. और आगे आता है कि when they, किस तरह से इसमें क्या मिसिंग होता है और किस हद तक ये ग्रेटर, क्योंकि ये भावनात्मक प्रदेश भी है ग्रेटर लाइफ. इन द कम्युनियन ऑफ टू मीटिंग माइंड्स, thought looked at thought and had no need of speech. Emotion clashed emotion in two hearts. They felt each other's thrill in the flesh and nerves, or melted each in each and grew immense, as when two houses burn and fire joins fire. Hate grappled hate and love broke in on love. Hate bhi us, dekho, aap hate to suna hai logon ka, jo kehte hai na choti moti vindictiveness. लेकिन हेट का अल्टीमेट एग्जाम्पल कौन सा है, जिसको कहते हैं रिवेंज. रिवेंज का अल्टीमेट एग्जाम्पल महाभारत में आता है, वो अंबालिका, अंबा. क्या एग्जाम्पल है, मैं तो भीष्म को मारूंगी. प्रॉमिस भी करती किसको, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है. मतलब यू कैनॉट किल अनलेस ही वॉन्ट्स टू डाई. कहां चली जाती, परशुराम के पास. फिर फाइनली क्या कहते हैं कि तुम मार सकती हो लेकिन इस जन्म में नहीं. So she goes into fire, is reborn. अब आपने कभी ये रिवेंज का एक अल्टीमेट एग्जाम्पल है, इवन देयर हेट ग्रैपल्ड विद हेट इट कैरीज ऑन विद दैट काइंड ऑफ इंटेंसिटी फियर्सनेस. Will wrestled with will on mind's invisible ground, others sensations passing through like waves, left quivering the subtle body's frame. So ये सारे यहाँ पे experience हैं, लेकिन again and again शेरविंद बताते हैं कि क्या चीज छूट जाती है, ये टच करता है वहां तक लेकिन it misses the point. Ultimately अम्बा ने मार तो दिया भीष्म को लेकिन she never became a hero. इट वॉज वेरी कावर्डली एक्ट कि ये क्या अर्जुन के सामने खड़े मारा तो अर्जुन ने, खुद भी कावर्डली बनी और अर्जुन को भी बेचारे के ऊपर एक ब्लॉट लग गया. एंड भीष्म ऑल्सो यस यू हैव द राइट टू रिटेक रिवेंज, मैं तुम्हारा दोषी हूं. अब ये जो भाव है जिसने धरती के अंदर एक अद्भुत लुक एट किंग हरिश्चंद्र, हाँ मैंने स्वप्न में दे दिया. So, ये ले आता आपको बहुत ऊपर तक. ये इंपॉर्टेंट है नर्स करने के लिए हमारे अंदर एक चाह टुवर्ड समथिंग ग्रेट ब्यूटिफुल, लेकिन ये अपने आप में पूर्ण नहीं है. यही शेरविंद बताते हैं कि इट इज एन अटेम्प्ट एंड एन एफर्ट बट इट कैनॉट फुलफिल. और इसीलिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं इसमें, और ये सारे एक्सपीरियंस से होता हुआ पोषित होता हुआ हमारा चैत्य तैयार होता है फॉर समथिंग ग्रेटर. इसलिए शेरविंद कहते हैं कि कैमल मैन बिगिनिंग है मनुष्य की, जब वो बोझा ढोता है दे आत्मबोध के साथ कि भाई हम तो बने ही बोझा ढोने के लिए हैं संसार का, और चाइल्ड मैन इज इट्स कल्मिनेशन, जब वो बच्चे की तरह वंडर और डिलाइट से भरा होता है, जब वो पूरा चैत्य उसका निकला हुआ है. कहते हैं लेकिन तुम इन दो स्टेज के बीच में देर इज अ स्टेज यू हैव टू एंटर इन टू दैट, दैट इज टू बी द लायन मैन. ये नीचे की उस पर वो बेस करते हैं कि अगर आपने कभी ये भाव, ये जो टू फाइट फॉर ए नोबल कॉज फॉर ए ग्रेट कॉज, इट डजेंट मैटर आप किस तरफ खड़े थे, ये हम लोग सोचते हैं इधर था उधर था, आपने एक आइडियल के लिए अपना जीवन जिया, आपको जो आइडियल लगा, and then you are ready for the next step of evolution. You think that one can leap from here to there, it is not possible. So one has to go through that stage, jisko hum idealism kehte hain. Aur yahan Shirvin, yet is it joy to live and to create. So what? Uska end parinam mein nahi milta hai. Koi baat nahi. Aapne prayas kiya, prayas ka anand. Ek saying hai, it is better to have loved and failed than never loved at all. कि भाई हम सेफ मार्ग पे चल रहे हैं क्योंकि इसमें तो डेंजर है. टेक द डेंजर, देन यू टेक द डेंजर एंड द चार्म, एंड देन यू विल बी रेडी. वो सारे अनुभवों से आप पोषित होकर तब तैयार होते हैं भगवान के लिए. सो ये स्टेप की बात करें कि जॉय इस स्टेप में क्या है, वो एक अलग लोअर वाइटल में जॉय नहीं है, सेटिस्फैक्शंस हैं, छोटे थ्रिल्स हैं, प्लेजर हैं. खाना बहुत अच्छा बना था, खाए आप बड़े खुश हो गए, हम थोड़ा पिकनिक करके आए, ये लोअर वाइटल के हैं. किसके साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा लगा, ये लोअर वाइटल के थोड़े बहुत. और हायर वाइटल का, हमने माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करी, चढ़े नहीं हम तो थोड़ा नीचे तक पहुंचे चले आए, फिर ट्राई करेंगे. क्यों ट्राई करोगे, वहां कैसा बड़ा भयानक है, फिर ट्राई करोगे, हाँ हम तो ट्राई करेंगे, अंतिम समय तक ट्राई करेंगे. क्यों, येट इज इट जॉय टू लिव एंड जॉय टू क्रिएट एंड जॉय टू लव एंड लेबर दो ऑल फेल्स. आपको पता है कि इट विल फेल, बट अगर आप इस अवस्था से नहीं गुजरे हैं तो यू आर नॉट ए कैंडिडेट फॉर द स्टिल ग्रेटर बियॉन्ड. So you know, enjoy to love. जो practical आदमी होता है ना, वो जीवन में अपने comfort zone में बस रहता है, वो वास्तव में कुछ नहीं कर पाता है. So you have to take that leap. You will fall. Again you will get up. One day, अंत में क्या होगा, आपके अंदर strength जागेगी, पोषित होगे, और फिर आप finally जो छलांग लगाओगे वो सीधा from Pondicherry to Lanka and back. धनुष्कोटि जहां से भी उन्होंने छलांग लगाई थी. ओके कौन जाने आए हों हनुमान जी ढूंढते ढूंढते. अब आए थे इसी तरफ से निकले थे ना, तो जरूर आए होंगे. पता नहीं कोई किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया. वहां तो है धनुष्कोटि, वो तो बाद में डॉक्यूमेंटेड है जब राम जी ने ब्रिज बनाया, लेकिन उसके पहले का. एंड जॉय टू सीक दो ऑल वी फाइंड डिसीव्स. जो प्रैक्टिकल माइंडेड होते कहते नहीं 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 ये तो धोखा है. गो थ्रू इट, लर्न थ्रू इट. एक स्टेज इवोल्यूशन की, एक योगी हैज गॉन थ्रू इट इस बात, लेकिन एक ह्यूमन इवोल्यूशन की बात हो रही है. एंड ऑल ऑन विच वी लीन बिट्रेज अवर ट्रस्ट, येट समथिंग इन इट्स डेप्थ्स वॉज वर्थ द पेन. ए पैशनेट मेमरी हॉन्ट्स विद एक्सटेसीज फायर. Even grief has joy hidden beneath its roots. क्यों grief में क्या joy है? हमने ये प्रयास किया. ये था ना वो again वो जो कारगिल वार हुआ था 2001-2 जो भी है, क्या वार था उसमें. एक आपने नाम सुना होगा विक्रम बत्रा. पाकिस्तानी डरते थे इससे कि ये आदमी आएगा तो क्या पता नहीं क्या करेगा. तहस नहस है वन मैन, बटालियंस का युद्ध चल रहा है. तो उन्होंने फाइनली दे स्पाइड अपॉन हिम. और जिस दिन उसकी डेथ हुई एक पूरा रॉकेट आके हिट इज नेक, लिटरली लाइक आप कह सकते हो कि ब्रह्मास्त्र या वो अस्त्र लाके उसके नेक पे लगा. उसके एक दिन पहले जब उससे कहा गया कि नहीं यू कैन नाउ स्टे इन द बैकग्राउंड, कहता है नहीं मैं तो आगे जाऊंगा, मुझे तो चढ़ना है वहां पे. तो उसने क्या वो उसका कैप्शन दिया था, ही सेड ये दिल मांगे मोर, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे आगे जाना है. उसके कमांड हायर कमांड से आया कि नो यू कैन, अभी चढ़ गए इतना बहुत, अब दूसरी बटालियन जाएगी. वो कहता है नहीं आई हैव टू वेंचर. ये क्या है यू नो ग्रीफ यू आर गोइंग टू कन्फ्रंट बट स्टिल यू फील दैट नहीं अभी ये पूर्ण नहीं हुआ. ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने संतान को भेजा है युद्ध में कि गो गो एंड फाइट इवन इफ यू फेल. तो ये जो क्षत्रिय भाव है ये इस वर्ल्ड की देन है. बिना क्षत्रिय भाव से गुजरे आप तैयार नहीं है टू बिकम ए सीकर. फॉर नथिंग इज ट्रूली वेन द वन हैज मेड इन अवर डिफिटेड हार्ट्स गॉड स्ट्रेंथ सर्वाइव्स एंड विक्ट्री स्टार स्टिल लाइट्स अवर डेस्परेट रोड. कि नहीं तारा तो दिख रहा है अभी भी. I must catch it. God's strength survives. Our death has made a passage to new worlds. This to life's music gives its anthem swell. Music में आप एक high note पे जो चले जाते हैं anthem swell. वो जो otherwise धीरे धीरे चल रहा है, आज खाना क्या बना है, आज pay कितनी मिली है, income tax कितना कटा, temperature कितना है, अचानक उसमें चलो युद्ध की रणभेरी बज रही है, अब देखिए anthem swell. Let us love even if all fails. ये जो anthem swell है ना life की, call of the, you know, march of the battles. ये क्या है? ये अद्भुत, उससे जो प्रेरणा मिलती है, जो साहस की कथाएं हैं. To all she lends the glory of her voice. Heavens, raptures, whisper to her heart in pass. पहले आप यही तो सुनोगे ना, whisper सुनोगे, उसके बाद आप तैयार होगे. जो आदमी इससे ही नहीं गुजर सकता वो क्या आगे भगवान के पथ पर चलने के लिए तो और बड़े युद्ध चाहिए. इसीलिए जब लोग हमको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, हम 60 इयर्स के हो गए, ये भी हो गया, हमारे बच्चे उच्चे सब सेटल हो गए हैं फॉरेन में, अब हम आके आश्रम में कुछ सेवा देना चाहते हैं, हम पैसा भी ऑफर करेंगे. अब समय बदल गया है, पीपल एक्सेप्ट, 70 आ गए आप जान पहचान है, इट्स अ डिफरेंट टाइम ऑल टुगेदर. बट व्हाट वाज दैट टाइम व्हेन मदर शुरबिंद वुड से, माँ की लेटर है, इफ यू कैन नॉट फेस द रियल लाइफ चैलेंजेस हाउ आर यू गोइंग टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द इनर लाइफ. या भाग के आते थे लोग कि नहीं हमको जीवन में तो कंफर्ट सीक करने के लिए आप आ रहे हैं, चाहे आप छोड़ के आ रहे हो या आप उससे गुजर के, लेकिन आप बेसिकली कंफर्ट सीक. माँ कहती है इट इज ए मच ग्रेटर बैटल यू हैव टू फाइट. आप अगर बाहर की बैटल से हम तैयार होते हैं इस इनर बैटल के लिए, इसलिए क्षत्रिय इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इसके बाद जो बैटल शुरू होगी उसमें तो आपको भूमि ही नहीं पता होगी कि कहाँ है. क्षत्रिय किससे लड़ रहा है, मेरा एनिमी बाहर है. इसीलिए किसी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार और श्री अरविंद अवतार में तीनों में क्या डिफरेंस है। कहा राम अवतार यहां अच्छे लोग हैं, पूरे लोग 2000 किलोमीटर दूर लंका में है या दंडकारण्य में है और उसके आगे, तो आपका डिमार्केशन अच्छा है। कृष्ण अवतार एक ही कुल में है, समझ ही नहीं आ रहा। श्री अरविंद अवतार भैया तुम्हारे ही अंदर है, बाहर मत ढूंढो, तुम्हारे ही अंदर दुर्योधन भी बैठा है, तुम्हारे ही अंदर कृष्ण भी है, तुम्हारे ही अंदर भीम भी है। नाउ यू डिसाइड, सो बट यू हैव टू गो थ्रू दैट फेज। अगर आप उससे नहीं, आप घबराने लगे कि सामने राक्षस आ गया तो आप कैसे तैयार हो गए अंदर की बैटल में, तो आपको पता भी नहीं है राक्षस सामने नहीं, अंदर चला आया तो आप गिव अप कर दोगे। माँ कहती है कि डिफिकल्टीज आएंगी, बट यू हैव टू लर्न टू एंड्योर एंड गो थ्रू विदाउट लूजिंग साइट ऑफ द गोल। वो व्यक्ति इस योग के लिए तैयार है। सो दैट इज द अर्थ ट्रांजिएंट यर्निंग्स क्राई फ्रॉम हर लिप्स एंड फेड अलोन द गॉड गिवन हिम एस्केप्स हर आर्ट दैट केम विद हर फ्रॉम हर स्पिरिचुअल होम बट स्टॉप्ड हाफवे एंड फेल्ड ए साइलेंट वर्ड अवेक इन सम डीप पॉज ऑफ वेटिंग वर्ड्स। लेके तो आया था वो हायर प्राण किसी उसको, लेकिन भूल गया, जैसे कर्ण भूल गए है उसके उनके पास ब्रह्मास्त्र चलाने का फॉर्मूला, पर लास्ट मिनट पर भूल गए। कुछ तो है लेकिन कैसे मैं कैप्चर करूं, तो ड्रीम है लेकिन उस ड्रीम को रियलिटी में बदलने की शक्ति नहीं है। सो इट मस्ट यू नो ट्राई स्टिल। अब वो बताते हैं कि जब अशुपति इस जगत में आते हैं तो ही वॉन्ट्स टू ही हैज सीन इट ऑल, उसकी जगह कहाँ है, उसका पर्पस क्या है, जो बीइंग्स हैं उस वर्ल्ड के, लेकिन यहां पर वो की नहीं है, वो तो वर्ल्ड को रूपांतरण करने की चाबी ढूंढ रहे हैं। तो वो अब इससे बाहर निकलना चाहते, बट इट इज नॉट ईजी टू कम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। देन फाइनली ही डिस्क्राइब्स टूवर्ड द एंड कि इस जगत की नियति क्या है, इस जगत में अल्टीमेट आप किस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं और क्यों हम यहां पर आइडियल वर्ल्ड को नहीं बना सकते इसके आधार पर। हाफ दिस नॉलेज इन अवर हिडन पार्ट्स वी कीप अवेक टू अ वेग मिस्ट्रीज अपील वी मीट ए डीप अनसीन रियलिटी फार ट्रूअर देन द वर्ल्ड्स फेस ऑफ प्रेजेंट ट्रूथ। कोई चीज है जो हमको बताती नहीं ये नहीं कुछ और है फार, लेकिन वो कहां है कैसे मिलेगा ये हम नहीं जानते हैं। वी आर चेस्ड बाई ए सेल्फ वी कैनॉट नाउ रिकॉल एंड मूव्ड बाई ए स्पिरिट वी मस्ट स्टिल बिकम। हमको भगवान ही ले जाते हैं इस मार्ग से लेकिन हमको पता नहीं होता, वी आर स्टिल सीकिंग। एज वन हु हैज लॉस्ट द किंगडम ऑफ हिज सोल वी लुक बैक टू सम गॉड फेज ऑफ आवर बर्थ अदर देन दिस इम्परफेक्ट क्रीचर हियर and hope in this or a diviner world to recover yet from heaven's patient guard what by our mind's forgetfulness we miss। तो हम ढूंढते हैं उसको, शायद कहीं मिल जाए, यहां मिल जाए, वहां मिल जाए, यहां नहीं हो सकता तो कम से कम कोई तो जगह होगी जहां पर हमें वो प्राप्त हो जाए। The body's thrill we bartered for mere pain. Our being's natural felicity, our heart's delight we have exchanged for grief. The body's thrill we bartered for mere pain. The bliss for which our mortal nature yearns, as yearns an obscure moth to blazing light. Our life is a march to a victory never won. Ye is jagat ka satya hai. This wave of being longing for delight, this eager turmoil of unsatisfied strengths, these long far files of forward striving hopes, lift worshipping eyes to the blue void called heaven, looking for the golden hand that never came. Lekin ye world hope nahi give up karta hai. Kya kehta hai? The advent for which all creation waits, yet still to ourselves we say rekindling faith. क्या कहते हैं हम, ये पैसेज मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत स्पेशल है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पैसेज ऑफ सावित्री आई हैड चांस्ड अपॉन ऑन समबडीज टेबल। मुझे पता नहीं था कि वो उनके टेबल पे वो उसके नीचे रखा हुआ था. एंड दैट टाइम मदर एंड श्रीबिंदु वेर कमिंग इन माई लाइफ फ्रॉम एवरी साइड. तो ये एक पैसेज और एक और पैसेज था, ऑल थिंग्स शैल चेंज इन गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आवर. लेकिन ये वाला पैसेज आया सो एंड आई सेड माय गॉड दिस सो अमेजिंग. वो सावित्री तो देखा नहीं, आई सेड ये क्या बात है, कितना अद्भुत है, पढ़ के आनंद आ गया. लेकिन वो सज्जन थे नहीं अपनी टेबल पर, बाद में मुझसे मिले, मैंने उनको बताया वो आपके टेबल पर मैंने पढ़ा था. हाँ तुमको चाहिए वो मैसेज कार्ड है जो आश्रम से मिलता है. अच्छा तब कुछ नहीं पता था आश्रम क्या है, मैसेज कार्ड क्या है. एंड येट गिवन मी दैट. So that is the first lines of Savitri. It's like my initiation lines. Oh, usme upar Shri Aurobindo ka ek picture tha aur niche lines thi. Oh, surely one day he shall come to our cry. One day he shall create our life anew and utter the magic formula of peace and bring perfection to the scheme of things. One day he shall descend to life and earth, leaving the secrecy of the eternal doors. Into a world that cries to him for help and bring the truth that sets the spirit free one day. The joy that is the baptism of the soul, the strength that is the outstretched arm of love. This line had touched me like anything. The joy that is the baptism of the soul. Baptism matlab birthright. ये तो आपको खुश होना तो भगवान ने हमको basically देके भेजा है. ये बड़ी अजीब बात है कि हम ढूंढते क्यों हैं. This is the minimum. Actually, we have been given by nature. आप बच्चों को देखिए, ये हम उनको सिखाते हैं कि तेरे को चॉकलेट नहीं मिलेगी तो दुखी होना है. फिर टीचर बताते हैं तेरे 99% नहीं आए तो दुखी होना है. फिर समाज बताता है कि तू डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना है तो दुखी होना है. तेरे पास धन नहीं है तो दुखी होना है. तो एक्चुअली बट जॉय इज द बैप्टिज्म ऑफ द सोल. बर्थ राइट है हमारा, हमें इसके लिए किस, ये भगवान ने दिया हुआ. इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये बेसिक चीजें हम लोग नहीं सीखते हैं. एंड देयर फॉर वी वरी, वी आर अफ्रेड, वी से भगवान तूने क्या किया. अरे वो तो दे के भेजा मिनिमम. एंड लुक एट दिस लाइन, द स्ट्रेंथ दैट इज द आउटस्ट्रेच्ड आर्म ऑफ लव. आई स्टिल रिमेंबर दैट पिक्चर ऑफ शेरविंदो, जो उनकी 1950 की पिक्चर है. शेरविंद ऐसे बैठे हुए और जब मैंने ये लाइन पढ़ी, द स्ट्रेंथ दैट इज द आउटस्ट्रेच्ड आर्म ऑफ लव. क्यों हम लोग लव से क्या समझते, कोई वीक फ्रेजाइल एक फीलिंग, अरे मेरा दिल टूट गया, ये लव नहीं. लव का साइन द स्ट्रेंथ. लव तो वो है जो महांधकार में चला जाता है निकालने के लिए, भयभीत नहीं होता है. स्ट्रेंथ प्रेम करने के लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत लिटरली कहते हैं ना कलेजा चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए आपके अंदर. एक वीक पर्सन कैनॉट लव बिकॉज ए वीक पर्सन वॉन्ट्स टू बी लव्ड. स्ट्रांग पर्सन लव्स एंड नोज हाउ टू लव. इवन उसका सब जा रहा है अंधकार में, स्टिल वो कहता है कि फॉर द सेक ऑफ लव. एक स्टोरी है ना बीट्रिस और इसकी दांते का, जो इन्फर्नो, जहाँ दौंते अपने विजन में जाते हैं और देखते हैं पूरा अनेक अनेक जगत में. तो वर्जिल आते हैं उनको, कहते हैं बैतरणी मैं तुमको पार कराऊंगा. तो बैतरणी पार कराते हैं, कहते हैं आप आगे भी ले जाइए. कहते नहीं मैं आगे नहीं ले जा सकता. कहते आप नहीं आगे ले जा सकते, आपने दुनिया की उस समय की सबसे बड़ी एपिक लिखी है 50,000 लाइन्स की. उनको महाभारत का पता नहीं है कि 1,00,000 लाइन्स की. आप हमें आगे नहीं ले जा सकते, ये कैसे संभव है. कहते हाँ मुझे इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन तो है लेकिन मेरा हृदय तैयार नहीं था आगे जाने के लिए. तो आगे तुम्हें कोई और ले जाएगा. तो कहते कौन ले जाए. कहते प्रतीक्षा करो. तो कौन ले जाने के लिए आते हैं दांते को, एक पीसेंट गर्ल थी जिसको ये बचपन में यंग एज में प्रेम करते थे और उसकी प्री मेच्योर डेथ हो गई थी. बस उसकी बैकग्राउंड यही थी. उसका नाम था बीट्रिस. तो कहते बीट्रिस यू. कहते यस नाउ यू कम विद मी, यू विल टेक मी. दांते इतना बड़ा मैं पोइट हूं, ये साधारण लड़की मुझे ले जाएगी. एक क्षण को तो अचंभित हो जाती. कहती यस आई हैव कम टू टेक यू. और बड़े फॉर्मली कहती हैं, शी इज नो मोर दैट गर्ल जो उन्होंने देखा था. वो कहती हैं कम विद मी एंड डू नॉट लुक बैक, क्योंकि उनको लगता है वर्जिल का क्या हुआ. कहते डू नॉट लुक बैक, डू नॉट लुक बैक. तो जाते 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 आगे अंत में वो बीट्रिस कहती हैं वेट. और जब वो ट्रिनिटी के सामने जाती हैं तो बीट्रिस इज ए इनकारनेशन और दी विभूति ऑफ डिवाइन मदर. वो डिवाइन मदर के साथ जाके एक हो जाती हैं. अब तो इनको पूरा शॉक लगता है कि ये क्या है, डिवाइन मदर ऐसे घूम रही थी. तो वो फिर बीट्रिस को कहते हैं व्हाई डिड यू कम. लास्ट में पूछते हैं कि आप क्यों आए मुझे बचाने के लिए, तो वो एक उत्तर में कहती लव, फॉर द सेक ऑफ लव. कौन सा लव? लव दैट हैज वोवन द स्टार्स. कौन सा प्रेम मैंने अपने अंदर धारण किया है जिसने सारे नक्षत्रों को एक सूत्र में बांधा हुआ है, उस प्रेम के कारण मैं तुम्हारे पास आई थी. तुमको तो स्मरण नहीं है, तुमने कुछ क्षणों के लिए मुझसे प्रेम किया था, फिर तो मैं चली गई थी, तुम भूल गए थे, तुम तो फिर अपने यात्रा में चले गए, लेकिन वो कुछ क्षणों का प्रेम मुझे स्मरण है. लव, लुक एट माइकल एंजलो ने तो थे, खैर बाद में अमृत दाय. तो माता जी बताती हैं जब उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी, वैसे तो थे कई सारी चीजें रही होंगी, लेकिन एक स्टोरी बताती हैं कि जहां जब माँ जोन ऑफ आर्क थी तो 19 साल की उम्र में उनको तो पूरे महाकाली का अवतार केश वेश मुड़ा करके वो योद्धा बन के लड़ी. बाद में उनका इंक्विजिशन हुआ और उनको जला दिया गया. जब वो स्टेक पे उनको जलाया जा रहा था तो वो इससे चिंतित नहीं थी जलाया जा रहा है, पीड़ा हो रही है, बट शी वांटेड ए क्रॉस, क्योंकि वो क्राइस्ट से कम्यून करती थी बेसिकली दिव्य चेतना से, वो उनको उस समय और परिस्थितियों के अनुरूप क्राइस्ट के रूप में आती थी. इसीलिए लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था शी इज मैड बिकॉज नोबडी कैन हियर द वॉइस ऑफ गॉड. तो इसके ऊपर विच है, इसको हम बर्न करेंगे. तो जब वो कहती हैं कि क्रॉस क्रॉस शी वांट्स द क्रॉस, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है. क्यों? क्योंकि पूरा वो विद्रोह करेंगे सारे, मैंने देख लिया कोई उनको हेल्प कर रहा है इस समय, तो नेक्स्ट तो वो चढ़ेगा क्रॉस के ऊपर. तो ही वॉज ए प्रीस्ट, हालांकि वो इस तरफ है जिन लोगों ने उनको जलाने की वो ऑर्डर दिया है, इनके हृदय में दया का भाव आता है. हाउ कैन आई डू दैट, हाउ कैन आई नॉट गिव हर ए क्रॉस. लेकिन अब क्रॉस कैसे पकड़ा है, तो कहते हैं कि एक उन्होंने हे को उठाया, बिचाली क्या कहते हैं उसको, सूखी घास, और उससे उन्होंने क्रॉस बनाया और लेके एक अनसीन मोमेंट में डाल दिया अग्नि के अंदर. और कहा जाता है कि माँ ने उस मोमेंट को नोट किया, ही गेव मी द क्रॉस. तो वो जो बींग्स होते हैं ना ये ग्रेटर वर्ल्ड के, जो डिवाइन बींग्स होते हैं, जब वो आते हैं तो लव, क्यों आए तुम? फॉर द सेक ऑफ लव. कौन सा लव? तुमने कुछ मोमेंट्स के लिए मुझे प्यार किया था. सो दिस इज वेयर इट वेट्स द स्ट्रेंथ दैट इज द आउटस्ट्रेच्ड आर्म ऑफ लव. वन डे ही शैल लिफ्ट हिज ब्यूटीज ड्रेडफुल वेल. ड्रेडफुल वेल क्या है? ये संसार भयानक, कालोस्मी भवा लोक शैकृत प्रबद्धो, मैं तो नष्ट करने आया हूं. काली के पीछे गौरी छिपी हुई है, नृत्य कर रही है निमुंड मालिनी, लेकिन पीछे में उमा गौरी अपना द फेयर वन बैठी हुई है. तो वन डे जब मनुष्य तैयार हो जाएगा तब, वन डे यू शैल लिफ्ट योर हिज ही शैल लिफ्ट हिज ब्यूटीज ड्रेडफुल वेल. वही छिपा हुआ है लेकिन इस मास्क के अंदर. इम्पोज डिलाइट ऑन द वर्ल्ड्स बीटिंग हार्ट. तब आप ये नहीं कि मुझे चाहिए नहीं चाहिए, मैं आया हूं ना, खुश रहे. डिलाइट, सर मेरी परिस्थितियां, आई एम देयर. परिस्थितियां तो भूल जा, आई एम देयर एंड आई इम्पोज डिलाइट. लुक एट दिस, ये स्टोरी रियल है. श्री अरविंद के जो लॉस्ट फुटस्टेप्स, सिल्वियो जो जेल के अंदर है, वो मरणासन्न है, मृत्यु को जाना चाहता है, फांसी लगाना चाहता है, मरूं कैसे. श्री अरविंद आते हैं उसके पास और कैसे वो सेव होके पूरा कंसंट्रेशन कैंप से बाहर निकलता है. तो यही स्टोरी है ना कि इम्पोज डिलाइट ऑन द वर्ल्ड्स बीटिंग हार्ट. कहता है कि जब मैं उनको देखता था मुझे आनंद का अनुभव होता था, जबकि वो सोच रहा है सुसाइड करने की, लेकिन वो कहता है मैं वेट करने लगा कि वो कब आएंगे, बिकॉज आई यूज टू फील एक्सटेसी इन दैट कंसंट्रेशन कैंप. इसको कहते हैं इम्पोज डिलाइट. इम्पोज डिलाइट on the world's beating heart and bear his secret body of light and bliss. अब greater life के अंदर जो ये भाव है, एक महत, कोई उन्नत, एक अद्भुत, एक perfect संसार को जो ढूंढ रहा है, most beautiful, most harmonious, unfading charm, unfading love, undying love, उसके भाव में, एस्पिरेशन में और रियलाइजेशन में बीच में एक प्रोसेस है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन. तो अगले दो जो कैंटो हैं दे आर द प्रोसेस थ्रू विच वन हैज टू पास. अगर व्यक्ति उससे डरता है तो वो आगे नहीं जा सकता है. दैट इज वॉट इज रिवील्ड इन द बिगनिंग कि जब अशुपति खड़े होते हैं इस जगत में निकलने वाले हैं, कहते हैं ये वर्ल्ड सक्सीड क्यों नहीं किया, इसके अंदर तो इतनी अद्भुत महत्वाकांक्षा है और इतना अद्भुत एस्पिरेशन है, वाई इट डिडंट सक्सीड. तब वो देखते हैं कि नीचे इनकॉन्शियंट है, कह रहा है नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, उसने उसको पकड़ के बांध करके रखा है. एंड दैट इज हाउ ही प्लंजेस इनटू द इनकॉन्शियंट कि तुम हो कौन जिसने इतनी बड़ी एस्पिरेशन को रोक रखा है. तभी वो कहते हैं टिल यू कौन कर द इनकॉन्शियंट, आपकी ये सब भावनाएं भावनाएं रह जाएंगी, दे विल बी ऑल विशफुल थिंकिंग, अनरियलाइजेबल, नॉट ओनली अनरियलाइज्ड, अनरियलाइजेबल ड्रीम्स. इसलिए उन्होंने पूरे योग की दशा ट्रूथ कॉन्करिंग द इनकॉन्शियंट किसके लिए, हम लोगों के लिए. सो यहां पर हम लोग रुकेंगे एंड वील कंटिन्यू नेक्स्ट वीक.